हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना। श्लोक संख्या 1, 2 एंड 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तत्थाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्ताग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्मादवेति। व्रजेव सन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां सदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम्, चोराज्ञगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। यं ब्रह्मावरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं
साम का ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर शिवासदी कौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 14वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच
संप्रस्थिति द्वारकायां जिष्णो बंधु दृदक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। संप्रस्थिति द्वारकायां जिष्णो बंधु दृदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। संप्रस्थिति द्वारकायां जिष्णो बंधु दृदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्।
सूत उवाच। सूत जी ने कहा, सूत जी याद है ना आपको, जिनसे नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो श्रवण कर रहे थे, उन्होंने अब कहा कि संप्रस्थिते, संप्रस्थिते मतलब चले जाकर द्वारिकायाम, द्वारिका में जाकर, किसने, जिष्णु, जिष्णु अर्जुन का एक नाम है। और वो क्यों गए थे, बंधु दिदृक्षया, बंधु यानी मित्रों तथा संबंधियों से दिदृक्षया मिलने के लिए। अभी क्योंकि बहुत सारा समय हो गया था ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, तुम धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, तुम्हें तो भगवान के विषय में चिंता करनी चाहिए। कितने समय से भगवान द्वारिका गए हैं, उनका कोई हाल नहीं आया, कोई किसी ने आपको उनके विषय में बताया भी नहीं है, और तुम इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो बल्कि भगवान के विषय में परेशान होना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज का मन भगवान की ओर गया तो उन्हें ऐसा लगा कि अब भगवान के विषय में पता करने के लिए अर्जुन को भेजता हूँ कि भगवान अब ठीक तो है, भगवान ने कुछ इतने समय से कोई समाचार नहीं है उनका। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम जाओ देख के आओ द्वारिकाधीश और द्वारिका वालों की क्या स्थिति है, उनका कोई समाचार लेके आओ। तो इसके बाद जब वो गए हैं तो सूत को सम बता रहे हैं, संप्रस्थिते द्वारिकायाम जिष्णो बंधु दिदृक्षया, तो जिष्णु यानी अर्जुन उन बंधुओं से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका समाचार लाने के लिए कहां गए, द्वारिकायाम। और ज्ञातुम च पुण्य श्लोका, श्लोकस्य ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, वास्तव में वो केवल बंधु और मित्रों को मिलने या उनका समाचार जानने के लिए नहीं गए थे, पुण्य श्लोकस्य जिनका यश वैदिक स्तोत्रों द्वारा गाया जाता है, अर्थात कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण का, उनका समाचार लेने के लिए गए। च विचेष्टितम, विचेष्टितम मतलब अगला कार्यक्रम क्या है, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें बताया था ना कि उन्होंने अपना 99% कार्य कर लिया है, अब 1% कार्य रह गया है, तो उसके लिए वो करके फिर अपने धाम में पुनः चले जाएंगे। तो अर्जुन ये जानना चाहते थे कि अभी उनका कौन सा कार्यक्रम विचेष्टितम और अगला कौन सा कार्यक्रम होगा, ये जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। अनुवाद, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को देखने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों को जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की सुरक्षा करने के लिए तथा अधर्मियों का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं। अतएव कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। पांच पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी थे। अतएव कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी हमें भगवान श्री कृष्ण की उस घोषणा के विषय में याद कराते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने 4.7 और 8 में कही। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार में अधर्म जोर पकड़ता है, अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ, दुष्टों का विनाश और अधर्मियों का सर्वनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दुर्योधन आदि अधर्मियों का सर्वनाश हो गया और युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा राजा की स्थापना भी हो गई। अब तो भगवान का कार्य खत्म हो गया अगर देखा जाए तो फिर आगे भगवान क्या करेंगे उसके विषय में जानने के लिए अर्जुन संप्रस्थिति द्वारकायाम द्वारिका की ओर गए। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि व्यतीता कति चिन्मासास तदानायात्तोर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुत्वः। व्यतीता कति चिन्मासास तदानायात्तोर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुत्वः। व्यतीता कति चिन्मासास तदानायात्तोर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुत्वः। व्यतीता कतिचिन मासा, व्यतीता मतलब अर्जुन को गए हुए व्यतीत हो गए थे बहुत सारे, कतिचिन मासा कुछ महीने बीत गए, 7 महीने कहा जाता है, 7 महीने हो गए और अर्जुन का कोई समाचार नहीं आया। अब उस समय तो ना फोन था, ना ही व्हाट्सएप था और न ही किस कोई और ऐसा उपाय जिसके द्वारा हम फटाफट से जान सकें कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि किसी और को भेजेंगे तो उतना समय वापस से लगेगा। तो क्योंकि व्यतीता कतिचिन मासा, बहुत सारा समय बीत गया था, तदा नायात ततो अर्जुन, तदा उसके बाद भी नायात ततो अर्जुन वापस आए नहीं थे, 7 महीने बीत गए अभी तक अर्जुन वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत अंदर से ऐसा हो रहा था कि अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आए। और उसके साथ साथ ददर्श घोर रूपाणी, घोर रूपाणी मतलब बहुत ही भयानक अपशकुन दिख रहे थे उनको। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में वो कार्य जो कभी नहीं हुए वो उनको दिख रहे थे, वो बातें जो पहले कभी उन्होंने देखी नहीं थी, कभी उन्होंने ऐसी चीजों को रियलाइज नहीं किया था, वो सब हो रहे थे। घोर रूपाणी बहुत ही भयानक कार्य, निमित्तानि कुरुद्वहा, कुरुद्वहा मतलब कुरुओं के अब जो राजा हैं अर्थात युधिष्ठिर महाराज, उनको निमित्तानि मतलब विभिन्न कारण से बहुत ही घोर रूपाणी बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे। अनुवाद देखिए, कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापिस नहीं लौटे, तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अत्यंत ही भयानक थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण अनंत है, हमारे सर्वशक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली। उनके प्रत्येक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादकता तथा भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य से ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध हैं। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता, सारा राज्य संपन्नता का सारा साज सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलझलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी। अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारिका से भी कोई कुशलता का समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य जब आकाश में प्रकाशमान होता है तो यह पूरी पृथ्वी है उसके अंदर कहीं भी अंधकार नहीं होता है और सूर्य के कारण ही जीवों का जीवन और उनकी कुशलता संभव है। जब सूर्य प्रकाशित होता है तभी तो अन्न उत्पन्न होता है, सूर्य प्रकाशित होता है तभी तो समुद्र से जल ऊपर उठता है, बादल बनकर पुनः वापस आता है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही जीव सुबह उठते हैं, वरना तो क्या होता, अंधकार में हर जगह तमोगुण का राज्य होता। और सूर्य के कारण, अब सूर्य अगर नहीं होता तो क्या होता, पूरी सृष्टि जो है ना वो जम जाती, बर्फ बन जाती, क्योंकि सूर्य के कारण ही हमारे जिस्म को और हमारी सृष्टि को तापमान प्राप्त होता है। तो जब सूर्य होता है अपनी स्थिति में होता है तो फिर क्या होता है, जीवों को उनकी समस्त आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं। और भगवान श्री कृष्ण सूर्य से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, उनके तो एक एक श्वास से लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि होती है और पुनः संहार होता है। जैसे हमने पढ़ा कि उनके एक जब वो श्वास लेते हैं कारण दक्षिणा रूप के रूप में, तो फिर एक एक रोम से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, हर ब्रह्मांड में सूर्य होता है। तो जब वह भगवान इस पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं तो फिर जीवों के लिए कोई भी इस संसार में आपत्ति नहीं होती है, कोई भी अपशकुन नहीं होता, क्योंकि भगवान का होना ही मंगलमय है। भगवान साक्षात मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये भगवान जो है उनका उपस्थित होना इस बात की गारंटी है कि जीवों के लिए कहीं कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। तो जब भगवान इस संसार में होते हैं तब ना किसी का हानि, ना किसी की हानि होती है, ना धर्म की हानि होती है और ना ही कोई अपशकुन हो सकता है। इसलिए जब भगवान इस संसार में स्वयं उपस्थित थे तो उनके कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरम अवस्था में थे, क्योंकि भगवान धर्म की सुरक्षा करने के लिए इस संसार में आए थे। तो उनके होने से धर्म और ज्ञान बहुत ही विकसित थे। और जिस प्रकार सूर्य के होने से अंधकार का प्रश्न नहीं उठता, सूर्य जहाँ होता है तहाँ सर्वत्र प्रकाश जलमलाता है,
उसी प्रकार जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अधर्म नहीं होता, अशांति नहीं होती, अज्ञानता नहीं होती। तो जब भगवान इस संसार में थे तो धर्म और ज्ञान की पराकाष्ठा थी।
लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज ने देखा मेरे राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसे अपशकुन हो रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ, तो उनको बहुत भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं भगवान इस संसार से चले तो नहीं गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ऐसे अपशकुन अब जब मिल रहे हैं मुझे, तो ऐसा लगता है इस संसार में अब कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण जब तक हैं तब तक उनके जीवन में इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन कृष्ण के होने से उनको वो अपशकुन भी उनके लिए शुभ शकुन बन जाते थे, है ना। कभी उनको यदि वनवास में भेज दिया जाता था, या कभी उनके लिए बहुत दुर्योधन इत्यादि ने उनको कष्ट पहुंचाने की मैं कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे तो वो सब उनके लिए बहुत ही आनंदमय हो जाता था। क्योंकि इसीलिए कुंती महारानी कहती थी विपदा संतु साक्षात तत्र तत्र जगत, वो सारी विपत्तियां मैं चाहती हूँ बार बार मैं ऊपर आए, क्योंकि जब विपत्तियों में तुम साथ देते हो तो वो विपत्ति संपत्ति बन जाती है। लेकिन आज क्योंकि कृष्ण इस भौतिक जगत में नहीं थे तो युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित हो गए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि अर्जुन भी इतने समय से द्वारिका चले गए हैं, उनका भी कोई समाचार नहीं आया, द्वारिका वासियों का भी समाचार कोई नहीं आया, तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे। आगे कहते हैं सुत गोस्वामी, कालस्य च गतिम रोत्राम विपर्यस्तर तु धर्मणा पापीयसीम नृणाम वार्ता क्रोधलोभानृतात्मना कालस्य च गतिम रोत्राम विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीम नृणाम वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मना कालस्य च गतिम रौत्राम् विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीम नृणाम वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मना कालस्य च गतिम रोत्राम विपर्यस्तर्तु धर्मिणा पापीयसीम नृणाम वार्ताम क्रोधलोभानृतात्मना कालस्य च गतिम रोत्राम। अभी सूत गोस्वामी कहते कालस्य जो शाश्वत काल सदा से चल रहा था, च गतिम उसकी जो गति थी वो रौद्राम वो भयानक हो गई थी। काल की गति भयानक हो गई थी अर्थात काल बहुत ही तीव्रता से बीत रहा था। अब जैसे पहले जमाने में क्या होता था, काल समय जो है वो बहुत धीरे धीरे बीतता था, लेकिन अब काल की गति बहुत ही भयानक हो गई थी और विपर्यस्त तर ऋतु होती है ना, जो मौसम धर्मिण जो नियमित है, जैसे मौसम जो है वो भी समय से पहले या समय के मतलब जैसा समय होता था उस जिस मौसम का वो मौसम नहीं होता था। जैसे सर्दियों में सर्दी नहीं हो जाती थी और भी बारिश शुरू हो जाती थी, हालांकि बारिश किस में होनी चाहिए, गर्मियों में होनी चाहिए, गर्मी में बारिश होती है तो मौसम इतना अच्छा लगने लगता है सुहावना, लेकिन यदि सर्दी की ऋतु में बारिश हो जाएगी तो सबके लिए कष्ट हो जाएगा। और जब मतलब मौसम अगर बाहर का होता था, बसंत का मौसम होता था, तो भी खिजां की तरह पत्ते झड़ने लगते थे। कहने का अर्थ ये है कि विपर्यस्तर ऋतु धर्मणा मतलब ऋतु का जो धर्म था, मौसम का जो धर्म था वो उल्टा पुट्टा हो गया था। और पापी असीम निर्णाम जितने भी मनुष्य थे वो अपराध करने की उनकी रुचि हो गई थी। पहले धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में अपराध नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि भगवान इस संसार में नहीं थे तो भगवान के जाने से लोगों की जो बुद्धि थी, उनके अंदर जो ज्ञान था वो समाप्त हो गया। अब वो केवल अज्ञानता के कारण अपने इस नश्वर जीवन को ही आनंदित करने के लिए कार्य करते थे और ये नहीं सोचते थे कि इसका क्या परिणाम होता है। तो उसके लिए क्या करते थे, वो निर्णाम जो मनुष्य थे वो अपराध करना शुरू हो गए थे, पाप करते थे और वार्ता मतलब जीविका का साधन सिर्फ और सिर्फ अपराध क्यों करते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा भौतिक आनंद प्राप्त करें। और जीवों का स्वभाव चेंज हो गया था, क्रोध लोभ हर कोई गुस्से वाला हो गया था, क्रोध सब लोग एक दूसरे पर क्रोध करना शुरू हो रहे थे और हर किसी के हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया था, लालच उत्पन्न हो गया था। और अनृत का मतलब होता है झूठ, सब कोई झूठ बोलते थे, सब कोई क्रोधी हो गए थे, लालची हो गए थे, केवल इंद्रिय तृप्ति ही जीवों का लक्ष्य बन गया था। अज्ञानता के कारण वो अपने वास्तविकता को भूल गए थे और अपने आप इस भौतिक जगत में अपने आप को खुश रखने के लिए कितने ही अपराध करना शुरू हो गए थे। सारे लोग, आत्मनाम का मतलब होता है सारे लोगों का। अनुवाद देखिए, उन्होंने देखा कि काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत ही भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत ही लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो चुके थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। श्रील प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब सभ्यता का संबंध भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितताओं में परिवर्तन जीविका के अनुचित साधन लोभ क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। यानी कि जब तक सभ्यता आपके जीवन की डोर जब तक आपने भगवान को दी हुई है, जब तक भगवान का प्रेम आपके हृदय में है तो सब कुछ उचित ढंग से होता है। जीव के हृदय में लालच नहीं होती है क्योंकि वो जानता है कि भगवान ने मेरे लिए जो भी किया है वो ही मेरे लिए उचित है। तो अनुचित साधन से अपराध करके वो अपनी जीविका के लिए और भी सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। जीव के हृदय में लालच नहीं होता, लोभ नहीं होती, क्रोध नहीं होता, धोखाधड़ी जैसी भावनाएं नहीं होती। लेकिन जब भगवान के साथ प्रेम का संबंध टूटने लगता है तो ये सब वस्तुएं दिखने लगती हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, ऋतु संबंधी नियमितताओं का परिवर्तन एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों में के प्रकट होने से सूचित होता है। उदाहरणार्थ वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फलने फूलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धूर्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस संसार में अगर कोई आपको लालची, क्रोधी और धूर्त दिख रहा है तो ये समझ जाओ कि वो ईश्वर विहीन है, अर्थात उसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है। वो अपने आप को भगवान का दास नहीं मानता, वो भगवान से कोई प्रेम नहीं करता और न ही भगवान की आज्ञाओं का पालन करता, न ही भगवान से डरता है। और आज हम देखते हैं सारे लोगों के हृदय में लालच है, क्रोध है, धूर्तता है, धोखाबाजी है। इसका कारण यही है कि जीव इतना अज्ञानी हो गया है कि वो शास्त्रों पर कोई भरोसा नहीं रखता, वो भगवान के इस नियम को नहीं मानता है, भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। वो समझता है कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ और मैं अपनी मर्जी से अपनी इंद्र तृप्ति के साधन कोई भी अपराध करके कमाऊंगा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। ये केवल अज्ञानता है। और जैसा कि हम जानते हैं, इग्नोरेंस इज नॉट मीन दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम द लॉ। अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि आप कानून से बच जाओगे। यदि आप इस भौतिक जगत में भी कानून को अपने हाथ में ले लेते हो और उसके आदेशों के विपरीत कार्य करते हो तो दंड भोगना पड़ता है। उसी तरह यदि हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते और अपराध करते हैं तो अवश्य हमें दंड भुगतना पड़ता है। और जिसको भगवान का भय नहीं होता, जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं होता, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में उपर्युक्त सारे लक्षणों का अभाव था। जब तक भगवान इस संसार में थे तब तक महाराज युधिष्ठिर का राज्य धर्म राज्य था, और वहाँ पर ना किसी के हृदय में अपराध था, ना लोभ था, ना लालच था, ना क्रोध था, और ना ही कोई अपराध करता था, ना ही कोई पाप करता था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए, और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान का अवसान हो गया है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब अपशकुन मुझे इसलिए दिख रहे हैं, शायद भगवान चले न गए हों। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्ति परक कर्म से हट जाना। अनुचित साधन का मतलब क्या है? वृत्ति परक, यानी अगर आप ब्राह्मण हो तो केवल धन अर्जित करने के लिए आप वैश्य का कारोबार करना शुरू कर दो। यदि आप क्षत्रिय हो तो केवल धन अर्जित करने के लिए शूद्र बनना भी स्वीकार कर दो। मतलब अपना जो वृत्ति परक आपके जो जिस वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो उसके विपरीत यदि आप कार्य करते हो तो इसका मतलब होता है जीवन बिताने के लिए अनुचित साधन। वास्तव में यदि हम वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो फिर हमारी जीविका बहुत ही सुंदर ढंग से चल सकती है, लेकिन जब हृदय में लालच उत्पन्न हो जाता है तो हम अपनी वृत्ति पर कार्य से हटकर दूसरा अनुचित कार्य करना शुरू कर देते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, कुछ कर्म नियत है, किन्तु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्म को अपना धर्म कर्म घोषित करता है और घोषित करके ग्रहण करता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष महत्तर जीवन उद्देश्य नहीं होता तो वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। क्यों जीव गलत कार्य क्यों करता है? श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब मनुष्य के समक्ष महत्तर जीवन उद्देश्य नहीं होता, वो समझता है कि जो भौतिक जगत में मैं आया हूँ कुछ समय के लिए, 50-60 साल के लिए, वही सब कुछ है। इसी जीवन में मुझे आनंद करना, इसी जीवन में तृप्ति करनी है, इसी जीवन में मेरी इंद्रिय तृप्ति के साधनों को ज्यादा से ज्यादा अर्जित करूं, और मरने के बाद किसने देखा है? वास्तव में हमारा जीवन, वास्तविक जीवन स्टार्ट होता है मृत्यु के बाद। इसलिए इस पूरे जीवन में हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। लेकिन जब जीव अज्ञानता के कारण अपने इसी भौतिक जीवन को और इसी भौतिक शरीर को सब कुछ मानने लगता है तभी वो अपराध करने लगता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। और इसका कारण क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, केवल अज्ञानता के कारण। हम अपनी वास्तविकता के ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाते हैं, इसी के कारण गलत कार्य करते हैं, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में क्या है? श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि हमें ये अगर हम अभी पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा अब भी भगवान श्री कृष्ण संसार में नहीं है, इसी कारण इस भौतिक जगत में इतनी आपत्तियां हैं, इतनी अपशकुन है, लोगों के हृदय में इतना क्रोध है, धोखाबाजी है, लालच है, लोभ है, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, और ये सब अपराध, ये सब पाप इसलिए हो रहे हैं ना अज्ञानता के कारण। तो यदि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करता है, और इससे जीव का अज्ञान समाप्त हो जाता है और जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो अपराध समाप्त हो जाते हैं। जीव को अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हृदय के अंदर एक उत्सुकता जागृत होती है। हृदय से काम क्रोध लोभ इत्यादि जितने भी अनर्थ हैं वो धुल जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नित्यम भागवत सेवा नित्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें ताकि कलयुग के जो अपशकुन हैं वो हम पर असर ना कर सके। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा ये सब इतने अपराध हो रहे हैं तो इसका कारण अवश्य यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार से चले गए हैं, तो वो और भी ज्यादा चिंतित हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया वो हम कल पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।